हम चर्चा कर रहे थे उस महान मंगल की जो सबके लिए आवश्यक है, चाहे गृह त्यागी हो चाहे गृह हो। गृह के लिए तो और अधिक कि अपने आप को जानो, अपने आप की शरण जाओ, अपने आप अपने भीतर जो कुछ हो रहा है उसको जानते हुए ही जो दोष है उसे दूर करेंगे, जो गुण है उसको धारण करेंगे, औरों को देखते रह जाएंगे तो अपना कल्याण नहीं होगा। अपना कल्याण करने के लिए अपने आप को देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आत्म प्रणिधान, पर प्रणिधान नहीं। तभी कहा गया काम क्रोध दो भये विकारा, अरे आप ही आप जरे संसार। कितना जलता है भीतर, काम पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है और जलता है, जानता नहीं कि मैं जल रहा हूं। तो कैसे कैसे अपने को सुधारेगा? सुधारना खुद को होता है, बिगाड़ता भी खुद अपने आप को है। शुद्धि अशुद्धि पच्चतंग, प्रत्येक की अपनी अपनी। नान्यो अन्यस्य विशोधिये, नान्यो अन्यंग विशोधिये। कोई दूसरा किसी को शोधता नहीं, शुद्ध नहीं करता। शुद्ध का अर्थ होता विमुक्ति भी। कोई दूसरा किसी को विमुक्त नहीं कर सकता, स्वयं अपने आप को मुक्त करना है, क्योंकि स्वयं ही अपने आप को बंधन में बांधता है। अपने बारे में जानकारी नहीं है, अज्ञानी है तो बांधता है, अपने बारे में जानकारी हो जाए, ज्ञानी हो जाए तो बंधन खोलता चला जाए, मुक्त हो जाए। इसीलिए ये भारत के महत्वपूर्ण विद्या उपदेश किस तरह फैला सब जगह। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। अरे जो अपने आप को नहीं जान पाएगा वो अपने को सुधारेगा कैसे? अपने आप को जानो, अपने आप को जान करके ही अपना मालिक बनता है आदमी। अत्ता ही अत्तनो नाथ हो, अत्ता ही अत्तनो गति। और अपना मालिक बनता है तो अपनी गति बनाता है, सदगति बनाता है, सारी गतियों के परे मुक्त अवस्था तक अपने आप को पहुंचाता है। अपने आप को जानेगा नहीं तो अपनी मलकियत कैसे हासिल करेगा? अपनी मलकियत हासिल करनी है। तभी कहा किसी के शरण जाने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध की शरण बुद्ध के समय इसलिए गए कि वो मार्ग दिखाता है, वो मार्गदाता है, मुक्तिदाता नहीं। मुक्तिदाता मान करके कोई किसी के पास चला जाए तो धोखे में पड़ जाएगा। कोई किसी को मुक्त करने वाला नहीं, स्वयं अपने आप को मुक्त करना होता है। अब भी अगर कोई कहता है बुद्धं शरणं गच्छामि, तो बुद्ध के गुणों को याद करके वैसे गुण मेरे भीतर आए। गुणों की शरण है, व्यक्ति के नहीं। मुख्य बात तो भगवान बुद्ध ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, अत्तदीप विहरत, अपने आप को द्वीप बनाओ। समुद्र में नौका डगमगा रही है, न जाने कब डूब जाए, इतनी आंधी इतना तूफान, तो कोई एक द्वीप हो वहां जाकर के अपने को सुरक्षित कर ले। और कोई द्वीप नहीं है, अत्तदीप, तुम ही अपने द्वीप हो, तुम ही अपने को शरण दे सकते हो। तो अत्त शरणं, अपने आप को शरण दो। न अन्य शरणं, कितने स्पष्ट शब्दों में कहा, न अन्य शरणं, किसी अन्य की शरण में मत चले जाना। कोई बचाने वाला नहीं, कोई मुक्ति देने वाला नहीं, स्वयं अपने आप की मुक्ति स्वयं अपने हाथ में है। इस महत्वपूर्ण महामंगल की चर्चा करने के बाद आगे बढ़ें। अगला मंगल है बाहु सच्चंग और बाहु सुतंग। क्या बाहु सच्चंग? श्रुत ज्ञान बहुत हो, बाहु बहुत मात्रा में, बहुत मात्रा में ज्ञान हो, बौद्धिक ज्ञान, कोई अर्ज नहीं, वो भी तो होना चाहिए। बौद्धिक ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या हालत होगी? अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो आगे जाकर उनकी क्या दशा होगी? यही होगा ना, न शोभते सभा मध्ये, अरे हंस मध्ये बको यथा, हंसों के बीच में बगुला की तरह शोभा नहीं देगा। तो केवल शोभा दे या शोभा न दे इसीलिए नहीं, अपने जीवन को गृहस्थ है तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पढ़ना जरूरी है। स्कूलों में पढ़ाई होती है उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। उस जमाने में उसको श्रुत ज्ञान इसलिए कहा कि जो भी पढ़ाई होती थी, किताबें तो थी नहीं, लिखना भोजपत्र पर लिखते थे, बहुत कष्ट साध्य, बहुत समय साध्य, तो अधिकतर तो याद कर लेते थे और सुनते थे और याद कर लेते थे, सुनते थे याद कर लेते, श्रुति स्मृति श्रुति स्मृति। अब आजकल तो पुस्तकें हो गई, पुस्तकें नहीं हो गई और इतने साधन हो गए, तो हर तरह के साधन का उपयोग करके हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गृहस्थ को बचपन से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एक ख्याल रखें, शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण भी हो, उसके साथ साथ चरित्र निर्माण की विद्या नहीं सिखाई गई तो बहुत बड़ी कमी रह जाएगी, बहुत बड़ी कमी रह जाएगी, कहीं ना कहीं धोखे में आ जाएंगे। चरित्र निर्माण के लिए अपने भीतर ये साथ साथ चले, अपने भीतर जो खोट है उसे दूर करना है, पढ़ाई करनी है, समझना है, अपने भीतर खोट है उसे दूर करना है। पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है कि अपने यहाँ के भी दूसरों के भी धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि हम समझें बहुत बार ऐसे होता है, अच्छे अच्छे धर्मशास्त्र और उसमें न जाने कितनी बातें ऐसी अंधविश्वास की डाल देते हैं, अंधमान्यताएं उसमें इतनी जोड़ देते हैं कि बेचारा अनपढ़ व्यक्ति उस अंधश्रद्धा में डूब जाता है और सोचता ही नहीं, अपने तर्क के तराजू से तोलकर देखता ही नहीं कि ये चीज जो बताई जा रही है, लिखी गई है, ये तर्कसंगत है या नहीं, अपने बुद्धि की कसौटी पर कसकर देखता ही नहीं कि ये बुद्धि संगत है या नहीं, युक्ति संगत है या नहीं। तो पढ़ना चाहिए सभी शास्त्रों को, निंदा के लिए नहीं, उनमें जो जो अच्छी बात है उसे ग्रहण करेंगे और जो बात हमें भरमाने वाली है, गलत रास्ते ले जाने वाली है, किसी ने अपने स्वार्थ के लिए डाल दिया, लोगों को धोखे में डालने के लिए डाल दिया, निंदा नहीं करेंगे पर उससे दूर रहेंगे, क्योंकि समझदारी इस बात में है किसी भी बात को अंधविश्वास से मत स्वीकार करो। मैं अपनी बात कहूं, पहली बार 31 वर्ष की उम्र में विपश्यना के शिविर में शामिल होने के लिए गया, झिझक तो थी मन में, पराया धर्म है, पराया धर्म है, बौद्ध धर्म है, इत्यादि इत्यादि, चलो आजमा के देखते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने जो समझाया वो तो बड़ा ठीक लगा, चलो आजमा के देखते हैं। जाते हैं, उन्होंने एक छोटी सी पुस्तिका मेरे सामने रखी शिविर शुरू होने के पहले, और उसे जो पढ़ा, एक ही पेज में पढ़ा, मत मानो, फिर कहा मत मानो, मत मानो, मत मानो, मत मानो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि हमारी परंपरा इसे मान रही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि हमारे बुजुर्ग उसे मान रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि समाज के अधिकांश लोग इसे मान रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि हमारा शास्त्र कहता है, इसलिए मत मानो कोई गुरु कहता है या मैं भी कहता हूं, इसलिए मत मानो, अनुभव उतार के देखो, कल्याणकारी लगे, अपने लिए भी कल्याणकारी, औरों के लिए भी कल्याणकारी, तब मानो, मानो ही नहीं फिर तो वैसा जीवन जियो। अरे मत मानो, मत मानो, तो होश आया कि हम तो बचपन से यही सुनते आए कि बाबा वचन प्रमाण, गुरु वचन प्रमाण, शास्त्र वचन प्रमाण, जो लिखा है भले युक्ति संगत नहीं है, बुद्धि संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, फिर भी मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे नरक में जाओगे, मानोगे स्वर्ग में जाओगे, यही सीखा। और ये कैसा आचार्य है, ये कैसी विद्या है, जहां कह जाता मत मानो, मत मानो, जानो और अच्छा लगे तब मानो, तो अंधविश्वास नहीं। इसी तरह से शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। सभी परंपराओं के शास्त्र इसी दृष्टिकोण से, जो जो बात युक्ति संगत लगे, कल्याणकारी लगे, स्वीकार करो, कहीं की हो चाहे, किसी को मेरी और उसकी नहीं, धर्म सबका होता है। जहां कहीं भी एक गुलाब का फूल खिला हुआ दिखे, बहुत खूबसूरत, बहुत सुगंधित, स्वीकार करो उसे, फूल को स्वीकार कर रहे हो। जिस डाली पर लगा उस डाली को नहीं, उसमें कांटे भी हैं, जिस पौधे पर लगा उस पौधे को नहीं, उसमें कांटे भी हैं। अच्छाई जहां है उसको, तेरी मेरी, हमारा संप्रदाय तुम्हारा संप्रदाय नहीं, जहां अच्छाई है उसे स्वीकार करो। तो अध्ययन करोगे तब न समझ पाओगे, तो इसलिए शास्त्रों का भी अध्ययन करो, अपने जनरल नॉलेज के लिए और बातों का भी अध्ययन करो। और एक ये भी, शास्त्रों का अध्ययन होगा तो बात समझ में आएगी, चमत्कार में धर्म नहीं है। बात खूब समझ में आएगी, चमत्कार तो अनेक प्रकार से होते हैं, अनेक प्रकार से कोई चमत्कार करके दिखा सकता है। कोई प्रेत विद्या सीख ली, उससे सिखाया, किसी ने कोई ऐसी विद्या सीख ली जिसके वजह से कुछ ऐसी बातें दिखाता है जैसे कोई बहुत विस्मयजनक हो। अरे हम दिन रात इन जादूगरों को देखते हैं, ऐसा ऐसा दृश्य खड़ा करते हैं कि आश्चर्य होता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन जादूगर ईमानदार है, कहता है ये मेरे हाथ की कला है, सच्चाई नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति को धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करना होता है, शासन करना होता है, वो उसे कहेगा देख मेरे में कितना गहरा धर्म है, और मैं देखो ये चमत्कार करके दिखाता हूँ। अरे भगवान बुद्ध ने कहा सबसे बड़ा चमत्कार क्या होता है, सबसे बड़ा चमत्कार ये कि एक बिगड़ेल चित्त को सुधार देवे, गलत रास्ते जाते हुए व्यक्ति को सुधार देवे, वो सुधार जो है वो सबसे बड़ा चमत्कार है। ध्यान के बल पर भी चमत्कार आते हैं, सिद्धियां आती हैं। मना किया, स्वयं महान सिद्धिमान, महान विद्यमान बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहता है कभी भूल करके भी कोई चमत्कार ना दिखाना, नहीं तो चमत्कार को अमहत्व हो जाएगा, लोग चमत्कार को नमस्कार करेंगे, धर्म गुण हो जाएगा, कभी नहीं दिखाना, क्योंकि चमत्कार में धोखा हो सकता है। रिद्धियां बहुत तरह की प्राप्त होती हैं, लौकिक रिद्धियां प्राप्त होती हैं, पारलौकिक रिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्या होगा उससे। सबसे बड़ी रिद्धि तो ये कि हम अपने दूषित चित्त को सुधार लें, अच्छा कर लें, अपना ये जीवन सुधार लें, लोक सुधार लें, परलोक सुधार लें। एक पढ़ाई इसलिए भी करनी होती है, स्कूलों में कॉलेजों में जाकर के जब पढ़ाई करोगे तो इसलिए भी कि हमारी स्मरण शक्ति बढ़े, जितना पढ़ा है वो याद रहे, वो याद रहे। पुरातन भारत में ऐसे लोग हुए जिनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज, साधना का भी बल था, अनेक जन्मों का अभ्यास भी था, साधना के द्वारा भी ऐसी अवस्था पर पहुंचता है जहां पूर्व जन्मों का ज्ञान, पूर्व जन्मों की याददाश्त सामने आती है। उसको एक और रखें तो भी इसी जन्म के बाद भगवान का एक प्रमुख शिष्य, उनका सेवक आनंद, स्मरण शक्ति इतनी तेज उसकी कि जो बात एक बार सुन ले वो जैसे कंप्यूटर में डाल दी गई, चाहे जब उसे वापस सुन लो, टेप रिकॉर्डर पर डाल दी गई, चाहे जब फिर टेप रिकॉर्डर को चला दो, कितनी बातें, बुद्ध के कितने उपदेश, 15,000 पृष्ठों के उपदेश, 45 वर्षों के उपदेश, सब उसे याद है। इसका कितना बड़ा लाभ हुआ ये समझे। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ महीनों बाद ही जो समझदार अरहंत भिक्षु थे, उन्होंने सोचा कि जैसे अन्य धर्म ग्रंथों में होता है, ऐसे ही भगवान की वाणी में भी न जाने क्या क्या जोड़ दिया जाएगा। किसी की अपनी मनपसंद बात जोड़ दी जाएगी, किसी की नापसंद बात निकाल दी जाएगी, बिगड़ जाएगा, धर्म शुद्ध कैसे रहेगा। तो अब तक जो भगवान की वाणी है उसको एक जगह इकट्ठी करके हम संघायन करें सब मिल करके, तो 500 अरहंत भिक्षु, जिनमें आनंद भी एक है, भगवान की सारी वाणी को संगायन करते हैं, गाते हैं साथ एक साथ, ताकि कहीं अशुद्धि न रह जाए। और वो प्रमाणिक, ये भगवान के कुछ महीने बाद ही ये संगायन हुआ, ये वाणी प्रमाणिक है। 100 वर्ष बीतते बीतते देखा कि कुछ लोग उसमें चाहते हैं जरा सा रद्दोबदल हो जाए अपने अपने स्वार्थ के लिए। फिर उस समय के लोगों को समझ में आया, जरा सा रद्दोबदल हुआ कि बिगड़ जाएगा। ठीक रास्ते चलते चलते जरा से भी एक और झुके न जाने कहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल जैसी वाणी है वैसी रहना है। तो दूसरा संघायन हुआ 100 वर्ष के बाद। फिर उस समय के जो बड़े विद्वान भिक्षु और बड़े उन्नत भिक्षु धर्म के क्षेत्र में, वो इकट्ठे हुए। फिर एक बार सारी की सारी वाणी का संघायन हुआ, याददाश्त इसलिए हुआ नहीं कैसे होता। फिर लगभग 200 वर्ष के बाद, 250 वर्ष के बाद सम्राट अशोक के समय फिर इकट्ठे हुए, तीसरा संघायन हुआ। और उस समय तो बहुत बड़ी बात हुई कि सारी की सारी बुद्धवाणी पड़ोस के देशों में भेजी गई। दुर्भाग्य हुआ कि भारत से सारी वाणी लुप्त हो गई आगे जा करके, लेकिन क्योंकि पड़ोस में भेजी गई तो वहां कायम रही, लंका में गई। तो 100 वर्ष के बाद उन्होंने जितनी वाणी थी, तब तक लिखना जरा सुविधाजनक हो गया था, जितनी वाणी थी वो सारी लिखी गई, ताड़पत्रों पर लिखी गई। ताड़पत्रों पर भले लिखी जाए, फिर भी कंठस्थ करने वाले कंठस्थ करते ही रहे, हर पीढ़ी में करते रहे, क्योंकि कंठस्थ करने वाले अनेक लोग होंगे, जगह जगह के लोग होंगे, तो फिर इकट्ठे होकर के जो कंठस्थ है उसका संगायन करेंगे, गायन करेंगे, कहीं कहीं गलती तो नहीं रह गई, किसी ने कुछ जोड़ तो नहीं दिया, किसी ने कुछ तोड़ तो नहीं दिया। तो कंठस्थ करने की परंपरा, भगवान की सारी वाणी 3 संग्रहों में संग्रहित की गई, एक को कहा सुत्त पिटक, दूसरे को कहा विनय पिटक, तीसरे को कहा अभिधम्म पिटक। कुछ लोग ऐसे जो सुत्त पिटक को कंठस्थ, कुछ विनय पिटक को कंठस्थ, कुछ अभिधम्म पिटक को कंठस्थ। तो सुत्त धर कहलाए, अभिधम्म धर कहलाए, विनय धर कहलाए। कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने तीनों पिटकों को कंठस्थ कर लिया, वो त्रिपिटक धर कहलाए। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये कंठस्थ करने की परंपरा कायम रही। तो छठी बार संगायन हुआ बर्मा में, उस समय भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको सारा त्रिपिटक कंठस्थ है, त्रिपिटक धर है, ये परंपरा कायम रही। इसलिए तब तक तो किताबें छप गए, और अब आगे जाकर के तो सीडी में आ गया सारा का सारा, इंटरनेट पर आ गया सारा का सारा, फिर भी वो परंपरा कायम है। याद रखना कि आज बर्मा में त्रिपिटक धर 8 त्रिपिटक धर हैं जिनको सारा कंठस्थ है, किसी किसी को तो अट्ठकथा का भी कुछ अंश कंठस्थ है। ये परंपरा, धर्म की वाणी को जितना भी याद करके रखे उतना कल्याण अपना भी और औरों का भी। तो जो पढ़ाई करते हैं उसमें अपनी स्मरण शक्ति को भी तेज करना आवश्यक होता है, और उसमें स्मरण शक्ति को तेज करने में साधना मदद करती है। साधना के बल पर हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, विषय को समझने की ताकत बढ़ती है और कल्याण होता है। ये बाहु सच्चंग बहुश्रुत, बहुत तरह के ज्ञानों को अधिकृत कर लेना गृहस्थ के लिए बहुत कल्याणकारी है, बहुत मंगलकारी है, बहुत कल्याणकारी है, बहुत मंगलकारी है।